एक बच्चे को जिस रंग में ढाला जाए वो ढल जाता है, और उस वक्त अरमान के दिल में अपनी माँ के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। उसी का फ़ायदा राजवीर जिंदगी उठाया था और अरमान को अपने जैसा बनाने की कोशिश की थी। ये अंदाज़ा लगाते हुए वंशिका पूरी तरह से चौंक गई थी। अब आगे और कहीं ना कहीं उसे अब सब कुछ याद आ गया था कि किस तरह से जब अरमान उसके भाई की जान ले रहा था उसके पीछे राजवीर जिंदल बड़ी बुरी तरह से हंस रहा था। अचानक वंशिका की आंखें लाल होने लगी थी और उसने डिसीजन ले लिया था कि वो आज की आज ही राजवीर जिंदल का अंत कर देंगी और अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगी। भले ही अरमान ने इतने लाखों करोड़ों लोगों की मदद करके अपने पाप को कम कर लिया है, लेकिन राजवीर जिंदल को उसके किए की सज़ा ज़रूर देकर रहेगी। वैसे भी उस वक्त अरमान सिंघानिया एक बच्चा था, लेकिन राजवीर जिंदल तो एक नौजवान था, उसे तो सही गलत की पहचान थी। तो इसका मतलब साफ है, राजवीर जिंदल ने ही उसके भाई का मर्डर किया था। वंशिका एंटीडोट हाथ में लिए ये सारी बातें सोच रही थी। अब वो राजवीर जिंदल को अपना बनाया हुआ एंटीडोट नहीं दे सकती थी। अगर उसकी जगह कोई और डॉक्टर होता तो वो उसे ज़रूर देती। इसीलिए वंशिका फटाफट से वहाँ से सीधा अरमान के वार्ड की तरफ जाने लगी थी और वहाँ जाकर सबकी नज़रों से बचकर वो एंटीडोट अरमान सिंघानिया को देना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर आस्था का शरीर एकदम पूरी तरह से बेचैन हो उठा था। ना उसका दिल नानी माँ के पास लग रहा था, ना ही दादाजी के पास। इसीलिए वो बेचैनी से अरमान के वार्ड के बाहर टहलने लगी थी। लेकिन तब तक वंशिका भी वहाँ पहुँच गई थी। वंशिका को देखकर आस्था ने उसे गले से लगा लिया था और रोते हुए मायूसी से बोली, ना जाने मेरे साथ ये क्या हो गया वंशिका, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति की जान कैसे बचाऊं, मैं क्या करूं? पता नहीं मेरे कान्हा भगवान कहाँ सोए हुए हैं, मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे। आस्था उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी क्योंकि अरमान को इस तरह से बेजान कभी देख नहीं सकती थी। इनफैक्ट दुनिया की कोई औरत अपने पति को कभी इस हालत में नहीं देख सकती थी। आस्था इस वक्त पूरी तरह से टूटी हुई थी। वंशिका आस्था को संभालते हुए उसे एक बेंच पर बैठा देती है और एक ग्लास पानी पिलाते हुए बोलती है, शांत हो जाओ आस्था, अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो फिर अरमान जी का ख्याल कौन रखेगा? अभी तुम्हें उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी है, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर वंशिका की नज़र जल्दी ही रश्मि और रौनक राधिका पर पड़ी, जो कि एक साथ खड़ी हुई थी और सभी की आंखें नम थीं। वंशिका ने रौनक को इशारा करके वहां बुला लिया था और जल्दी ही वो सब वहां गईं और आस्था को संभालने लगी। मौका देखकर वंशिका धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। वहीं आस्था के दिमाग में अचानक कुछ क्लिक हुआ और उसे कुछ याद आने लगा, क्योंकि जिस तरह से बेंच पर बैठकर वंशिका ने आस्था को पानी पिलाया, आस्था को याद आने लगा था कि अब से कुछ दिन पहले वो वंशिका को कॉलेज में मिली थी और इसी तरह से वो दोनों एक साथ कॉलेज की पार्क वाली बेंच पर बैठे हुए थे और वंशिका ने उसे डेविल किंग की आइडेंटिटी के बारे में बताया था। अब आस्था पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी और वो सोचने लगी थी कि अगर वंशिका गांव में किसी रिसर्च के लिए आई थी तो वो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में क्या कर रही थी। वहीं वंशिका ने रौनक, रश्मि और बाकी सबको आस्था के पास इसीलिए बुलाया ताकि वो मौका देखकर अरमान सिंघानिया के वार्ड में चुपके से जा सके। जैसे वो धीरे धीरे अब वार्ड के अंदर जाने लगी और उसने वार्ड के दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अपना पहला कदम रखने वाली थी, अचानक से कई सारे बॉडीगार्ड्स वहां आ गए और उन्होंने चारों तरफ से वंशिका को आकर घेर लिया था। अब तो जैसे ही अचानक इतने सारे बॉडीगार्ड वहां आए, पूरे के पूरे अस्पताल लॉबी में हलचल मच चुकी थी। इमरजेंसी गेट के बाहर इस तरह से बॉडीगार्ड्स ने वंशिका को पकड़ लिया तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई थी। वहीं आस्था तुरंत हैरानी से उठ खड़ी हुई और उन बॉडीगार्ड्स की ओर देखकर तेज आवाज में बोली, ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो वंशिका को, उसे इस तरह क्यों पकड़े रखा है? क्योंकि सभी लोगों ने वंशिका को गन पॉइंट पर ले रखा था, लेकिन तभी बीच में से टाइगर, मारिया, देव, आकाश, सुमित, साथ ही साथ ध्रुव, आहान वहां आ पहुंचते हैं। ध्रुव की तो हालत ऐसी हो रही थी मानो कि वो इस सदमे में अभी गिर जाएगा, क्योंकि उसकी आंखें इस वक्त आंसू रोकने के चक्कर में पूरी तरह से लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में खून जम गया हो। वेल, अब सब लोग हैरानी से कभी वंशिका को देख रहे थे तो कभी उन बॉडीगार्ड्स को। तब आस्था टाइगर की ओर देखकर रुआंसी आवाज में बोली, टाइगर भैया, ये सब क्या हो रहा है और आपने वंशिका को गन पॉइंट पर क्यों लिया है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी टाइगर ने कोई जवाब नहीं दिया। तब आस्था ने वापस से आहान की ओर देखकर सवाल पूछा, लेकिन आहान ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह से आस्था बारी बारी से कभी आकाश से, कभी सुमित से, कभी देव से पूछ रही थी, लेकिन कोई भी आस्था के सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। अब आस्था इरिटेट होकर जोरों से चिल्लाते हुए बोली, आखिर आप सब लोगों को हो क्या गया है? आप लोग मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस तरह से वंशिका को गन पॉइंट पर क्यों लिया है? क्या आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है? क्या आप लोग भूल गए हैं कि वंशिका कुछ ही पलों में हमारे कितने करीब आ गई है? वो हमारी फैमिली का हिस्सा है और आप लोग उसके साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? और शायद आप लोग भूल रहे हैं, अरमान जी ने उसे अपनी बहन माना है। अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, तभी अचानक एक बड़ी ही धीमी सी आवाज वहां आई। वो आवाज दादाजी की थी। दादाजी को होश आ गया था और अरमान को मिलने के चक्कर में वो अपने वार्ड में आराम नहीं कर पा रहे थे और वो अरमान को देखने के लिए बाहर आ गए थे।
और जैसे उन्होंने इस तरह से यहाँ पर भीड़ देखी तो वो तुरंत बोल पड़े, ये सब यहाँ क्या हो रहा है। अब जैसे ही बाकी सब ने दादाजी को देखा, सबके सब दौड़कर दादाजी के पास आ गए ताकि वो दादाजी को संभाल सके। वहीं रौनक आस्था का साथ देते हुए कहने लगी, आखिर आप सबको हो क्या गया है? आप सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? आप लोगों का कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? रश्मि, राधिका, एंजल भी वहाँ आ गई थी और सब बारी बारी से सवाल पूछ रही थी, आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है? आप लोग बताइए ना, यहाँ क्या हो रहा है? आप लोगों ने वंशिका को इस तरह से गन पॉइंट पर क्यों रखा है? क्योंकि काफी कम समय में वंशिका ने सभी लोगों के दिलों में अपनी एक जगह बना दी थी, तो सभी उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और इस तरह से अचानक वंशिका को गन पॉइंट पर लेने पर सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी रश्मि का सवाल सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे थे, लेकिन तभी आकाश आगे आया और अपना फोन निकालकर सारी लड़कियों के सामने एक वीडियो ऑन किया। वो वीडियो सारी लड़कियों को दिखा दिया। अब जैसे ही उन्होंने उस वीडियो को देखा तो सबकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई थी। उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से वंशिका ने इधर उधर देखते हुए अचानक अरमान को वायरस इंजेक्ट किया था। फ्लैशबैक, जिस वक्त टाइगर और मारिया अपने खून निकालने के लिए उस पुलिस चौकी में जा पहुंचे थे जहां पर दुर्जन सिंह और उसके आदमियों को कैद करके रखा हुआ था, तब उन्होंने मार मार कर सबसे जानने की कोशिश की थी कि आखिरकार अरमान को वायरस किसने दिया था, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक लड़का डरी हुई आवाज में बोला कि जो भी वहां हंगामा हो रहा था उसने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई है और वो उसके फोन में है, जो कि अब पुलिस वालों के पास मौजूद है।
तब टाइगर ने वो फोन पुलिस वालों से ले लिया था। वो देखना चाहता था कि शायद वीडियो में कुछ ना कुछ सुराग मिल जाए, या हो सकता है वो हमलावर कैमरे में कैद हो गया हो जो उस वक्त भीड़ में मौजूद था, क्योंकि उस वक्त गांव वालों में काफी ज्यादा हंगामा हो गया था, तो इसीलिए दुर्जन सिंह ने वीडियो बनवाई थी ताकि वो शहर के लोगों के खिलाफ सबूत प्रूफ इकट्ठा कर सके और सब लोगों को ये दिखाने के बाद भड़काए कि शहर के लोगों ने उसे मारने की कोशिश की है। उस रिकॉर्डिंग में अचानक से वंशिका दिखाई दी, कितनी चालाकी से वंशिका ने अरमान को इंजेक्शन दिया था। और अब जैसे ही टाइगर ने वो वीडियो देखने के बाद सब लोगों को वीडियो दिखाई, किसी को भी यकीन नहीं आया कि वंशिका ऐसा कर सकती है। सबका हैरानी के मारे मुंह खुला का खुला रह गया था, स्पेशली ध्रुव का, क्योंकि ध्रुव का दिल पूरी तरह से टूट गया था। ध्रुव वंशिका को चाहने लगा था, उसे प्यार करने लगा था। ध्रुव को लगता था कि शायद वो डिंपल से प्यार करता है, लेकिन डिंपल के तरफ सिर्फ और सिर्फ उसका अट्रैक्शन था। जवानी की दहलीज में कदम रखने के बाद पहली बार उसे सिर्फ डिंपल से अट्रैक्शन हुआ था, लेकिन डिंपल से उसे प्यार नहीं हुआ था। लेकिन प्यार तो उसे सिर्फ और सिर्फ वंशिका से हुआ था, लेकिन अब ये सब देखने के बाद तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। भला अरमान भाई पर हमला करने वाले से वो मोहब्बत कैसे कर सकता था? वो तो खुद अरमान पर जानलेवा हमला करने वालों को अपने हाथों से सजा देना चाहता था। सभी का बहुत बुरा हाल था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो करे क्या। रह रहकर उन्हें लग रहा था कि जरूर वंशिका एक बार फिर से अरमान की जान लेने की कोशिश करेंगी, और वंशिका ना कि अरमान को एंटीडोट देने के लिए जा रही थी। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलकर जाने की कोशिश की, तभी उन सब ने आकर वंशिका को अपनी बॉडीगार्ड के थ्रू पकड़वा लिया था। अब सब लोगों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वंशिका की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। वहीं दादाजी धीमे धीमे कदमों से वंशिका के पास आए। वंशिका उस वक्त सर झुकाकर खड़ी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त सभी की नज़रें उसी के ऊपर टिकी हुई हैं। वंशिका के पास जाकर दादाजी ने उसके सर पर हाथ रखकर पूछा, क्या क्यों किया आपने ऐसा बेटा? क्यों मेरे पोते की आपने जान लेने की कोशिश की है? क्या किया है उसने? हाँ बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? लेकिन इससे पहले कि वंशिका कुछ बोल पाती, तभी अचानक उसकी नज़र राजवीर जिंदल पर पड़ी, जो कि अपना एंटीडोट बनाने के बाद अविनाश के साथ और अबीर सिंह राठौर के साथ वहां आ रहा था। अचानक राजवीर जिंदल को अपने सामने देखकर वंशिका खुद को रोक नहीं पाती है, और अचानक से उसने एक बॉडीगार्ड से बंदूक छीन ली थी और सीधा राजवीर जिंदल पर तान दी थी। अब तो सब लोगों का मुंह पूरे शौक के मारे खुला का खुला रह गया था। तब वंशिका दादाजी की ओर देखकर बोली, आप जानना चाहते हैं मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से किया है, इस आदमी की जान मैं अपने हाथों से ले लूंगी। ये बोलते हुए वंशिका बड़ी ही खतरनाक दिखाई दे रही थी। वहीं राजवीर जिंदल को अपने सामने देखने के बाद आस्था के भी खून में आग लगने लगी थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वंशिका की राजवीर जिंदल से क्या दुश्मनी हो सकती है और वो इस तरह से राजवीर जिंदल की जान क्यों लेना चाहती है। लेकिन अब राजवीर जिंदल का दिमाग सनक गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है, वो इस तरह से उसकी जान क्यों लेना चाहती है। अचानक से उसने थोड़ा सा आगे बढ़कर वंशिका के हाथ पर जोरदार पंच मारकर उसके हाथ से उस गन को झट से छीनकर अपने हाथों में ले लिया था, और वंशिका की ओर गन पॉइंट करते हुए बोला, जस्ट शट अप,
मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी जान बहुत कीमती है और राजवीर जिंदल अपनी जान किसी भी कीमत पर जाने नहीं दे सकता है। ये सब कुछ राजवीर ने इतनी जल्दी किया कि किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। वहीं वंशिका के हाथ में तेज दर्द हुआ था, इसीलिए वो हल्का सा कराह उठी थी। वहीं ध्रुव तुरंत वंशिका को संभालने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके मन में ये बात आती है, वंशिका ने अरमान भाई को मारने की कोशिश की है। उसका दिल एक कड़वाहट से भर गया और वो आगे बढ़कर वंशिका को संभाल नहीं पाया। वहीं राजवीर जिंदल सबकी ओर गन पॉइंट करता हुआ तुरंत वहां से बाहर निकल गया था, क्योंकि भले ही वो वहां पर अपने चेले अरमान की जान बचाने के लिए आया था, लेकिन फिलहाल उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी मरी हुई बीवी थी और अपनी बीवी से जुदा होकर वो एक मिनट भी नहीं रह सकता था। इसीलिए राजवीर जल्दी ही वहां से दौड़कर अपने घर की ओर रवाना हो चुका था।